नमस्ते दोस्तों, कॉमस्पायर कम्युनिकेट टू इंस्पायर के इस 39वें एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बातें करने के लिए, अपने जीवन के कुछ रंगों को साझा करने के लिए हैं जिग्ना मेहता जी। जिग्ना जी जो कि एक कवि हैं, जो दिल से लिखती हैं और अपनी आत्मा के स्वरूप को अपनी कविताओं में झलका देती हैं। इनकी कविताएं उस सीधी साधी लड़की की तरह होती है जो बस अपनी उपस्थिति भर से अपने बारे में सब कुछ कह जाती है। जिग्ना जी की कविता के विषय में लिखती हैं, कविता औषधि है जो बीमारी दूर करती है, कविता विशैली है जो नए बीमार पैदा करती है। जिग्ना जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
धन्यवाद आपका, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर।
बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस मंच पर आने के लिए, यहाँ अपने जीवन के रंगों को साझा करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। तो जिग्ना जी, यहाँ मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप स्वयं के शब्दों में स्वयं को सभी श्रोताओं से परिचित कराएं।
मैं जिग्ना मेहता राजकोट गुजरात से हूँ और मैं एक होम मेकर हूँ, पर साथ में मेरी कोचिंग क्लास भी चलाती हूँ घर पे। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं और ज्यादातर मेरी रुचि लेखन में ही है, तो सारा दिन मेरा लेखन कार्य मेरे लिए प्रायोरिटी रहता है।
बहुत बढ़िया, तो आप एक शिक्षिका भी हैं जो बच्चों को पढ़ाती हैं और साथ साथ आपकी लेखनी तो हम सब जानते हैं, हम सब परिचित हैं आपकी लेखनी से, और जो हमारे श्रोतागण हैं वो अभी आपसे धीरे धीरे परिचित हो जाएंगे आपकी बातों से। तो जिग्ना जी, आप इतनी सुंदर कविताएं लिखती हैं और ऐसी कविताएं जो सीधा दिल में उतर आए, तो आपने अपनी कविताओं को हर बार एक नए रंग में, एक नए रूप में लाकर उसे अलग अलग तरह से साझा है, उसे एक नया आवरण दिया है, तो आपकी इस लिखने की शुरुआत कैसे हुई? आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी कविता यात्रा के बारे में हम सबको बताएं।
जी बिल्कुल, लिखने का शौक मुझे बचपन से रहा है। मेरे पापा व्यवसाय से डॉक्टर है, पर उन्हें भी लिखने का बहुत ज्यादा शौक है।
अच्छा।
तो वो लिखते रहते थे। मेरे दादाजी और मेरी नानी दोनों को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो मुझे मिला है लेगेसी में। मैं बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ती थी, मैं किताबी कीड़ा थी। फिर पापा को लिखते देख देख के बहुत सारे विचार मन में आते थे, तो सारे बस नोट करती रहती थी और ऐसे ही बस वर्ड बैंक बनता गया मेरा। फिर शादी के बाद सब कुछ बोलते ना कि राहें बदल गई। बड़ा परिवार था, बहुत सारे लोग थे, उनको संभालना था, फिर बच्चे, तो इस बीच में लेखन कार्य कहीं छूट सा गया।
जी,
उसके बाद जब थोड़ी फ्री हुई सब जिम्मेदारियों से, तो मैंने अपने कोचिंग क्लास शुरू किए और उसमें लिटरेचर पढ़ाते 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 कहीं मुझे ज्ञात हुआ कि यार मैं भी लिख सकती हूँ।
जी जी
और फिर से मैंने लिखना शुरू किया। इंस्टाग्राम पे छोटे छोटे पोस्ट डालती थी मैं बना बना के। हिंदी क्यों लिखती हूँ, ये तो एक मिरेकल ही है, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों लिखती हूँ हिंदी। ये शायद मेरे पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं, क्योंकि मेरी सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, हम गुजराती है तो गुजराती में ही बातचीत होती है। तो ये उसके बाद मुझे मेरी फ्रेंड मिली इंस्टाग्राम पे, फीलिंग्स बाय वर्ड्स करके लिखती है निधि सहगल।
जी,
और उसने मुझे एक ऐप बताई मेरा की, और वहां से बोल सकते कि मैं एक प्रोफेशनल राइटर जैसे लिखना शुरू की।
जी,
तो बस
सबसे पहले आपने निधि जी का जिक्र किया है, तो निधि जी तो सही में वो भी कमाल की कवयित्री हैं और उनसे हम पहले ही मिल चुके हैं। अभी जिग्ना जी, जब आप कविताएं लिखती हैं तो आप अलग अलग रसों को अलग अलग तरह से पिरोया करती हैं शब्दों में, कभी गजलों के रूप में, कभी दोहे में, कभी शेर में, कभी उन्मुक्त कविता के रूप में। तो आपकी हो सकता है बहुत सारी कविताएं आपने आज तक लिखी हैं, लेकिन कोई एक होगी जो आपकी सबसे प्रिय हो, तो आपसे अभी गुजारिश करूंगी कि आप अपनी सबसे प्रिय कविता को हम सबको सुनाएं।
मुझे नारी मन के विविध भाव लिखना बहुत अच्छा लगता है
जी,
और कहीं भी कहीं अत्याचार होते देखती हूँ किसी स्त्री पे, तो मन में पता नहीं कैसी जलन पैदा हो जाती है। तो अभी अभी हमारे गुजरात में अहमदाबाद में एक किस्सा बना था, एक आयशा नाम की लड़की को उसके घर वाले दहेज के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे और उसने सुसाइड कर लिया और एक सुसाइड वीडियो बना के वो बहुत वायरल भी हुआ था वो किस्सा।
अच्छा।
और उसने मुझे पूरा झकझोर के रख दिया था
जी।
और हम ऐसे प्यार प्रेम प्रकृति वो सब तो लिखते हैं, पर जब ऐसी बातें झकझोर देती है और अंदर से जो शब्द अपने आप निकलते हैं ना, वो लिखने के बाद पता नहीं कुछ अलग ही माहौल लगता है हमको। तो उस विषय पे मैंने कविता लिखी है, उसका शीर्षक है आजादी नारी की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं कि नारी के साथ ही अत्याचार हो रहा है, ये है वो। हम उसके रूट्स नहीं पकड़ते।
जी
अगर वो पकड़ लेना तो उसके बाद शायद स्त्रियों के लिए सफर आसान होगा।
जी जी
तो गौर फरमाइए,
जी
क्या कोई और देगा? क्या कोई और देगा? नहीं। क्या किसी पंछी को कैद करने वाला उसे खुशी खुशी आजाद कर देगा महज उसके शोर करने से या चीखने से? नहीं। डर का त्याग कर उसे उड़ने का हौसला भरना पड़ेगा अपने ही मन। पर आज भी कोई आयशा जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती नहीं और आत्महत्या करती है, आजादी नारी की कोसों दूर। सुन रहे हो? आजादी नारी की कोसों दूर है। अपनी बच्चियों को समझाओ, अपनी बच्चियों को समझाओ, तुम खुद ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हो। फिर वो कहीं नहीं रुकेगी, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। नाम तो सुना है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई यूं ही नहीं बनी, हौसले से बनी थी। और काल भी आधुनिक नहीं था आज के जैसे। आजादी का बीज नारी के मन में रोपित करना है, ताकि बने वो घना वृक्ष, छाया देने वाला, छाया देने वाला। धन्यवाद।
बहुत सुंदर जिग्ना जी ने बहुत सुंदर शब्दों में ये बता दिया कि जो हमें कैद कर रहा है वो आप ही हमें थोड़ी ही छोड़ देगा। हमें अंदर से, हमें अपने आप को, अपने हौसले को, अपने शक्ति को इतना सुदृढ़ बनाना होगा कि जिसने भी हमें कैद किया उसका हम सामना कर पाए और अपने पंखों के बल हम खुद उड़ पाए।
हाँ, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी
जी
कि ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है।
जी
अगर आपके घर में गर्ल चाइल्ड है तो आप उसको उसका विकास ऐसे करें ना, उसके मन में बचपन से ये बीज बोए कि हाँ, आपको सम्मान सबका करना है पर स्वाभिमान गंवा कर नहीं।
जी
आप बस आप अपने स्वाभिमान को ना मरने दे। अगर वो बचपन से उसके मन में हुआ ना, तो फिर कोई भी लड़की आत्महत्या नहीं करेगी।
जी जी बहुत सही बात कही अपनी, क्योंकि हमें खुद सुदृढ़ बढ़ना होगा, हमें खुद अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हम किसी और के आश्रय नहीं रह सकते। और जब हम कहते हैं नारी शक्ति या नारी का उत्थान होना चाहिए, और कई बार हम इसमें पुरुषों को उसके लिए जिम्मेदार बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। कई बार जैसे आपने भी बताया कि उस लड़की ने जब सुसाइड किया तो पूरे परिवार में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, स्त्रियां भी होंगी जिसने उसको प्रेरित किया, जिसने उसको।
इन्होंने ज्यादा टॉर्चर किया था।
जी जी तो आपने बहुत सही बात कही अपनी कविता के माध्यम से। लेकिन जिग्ना जी, ये तो हो गई सामाजिक व्यवस्था, और हम लोग सब कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था पे जब भी कोई चोट पहुंचती है तो हमारा दिल कड़ा उठता है, और हम अपने शब्दों के माध्यम से अपनी दिल की बात को कहना चाहते हैं, जो कि आपने बखूबी रखा है। पर जब आपकी कविताएं पढ़ती हूँ तो आपकी अधिकतर कविताओं में अध्यात्म या स्वत्व बोध नजर आता है, तो इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? जैसे अभी अभी आपकी एक कविता पढ़ी मैंने, जिसमें था, पहले तय कर लो मुझे देखते हो कहाँ, पाते हो कहाँ, कभी कहते हो हृदयस्थ हूं मैं, कभी कहते कुदरत में निहित। तो आपसे आग्रह करूंगी इस कविता को पूरा करके हमें अपने अध्यात्म के प्रति झुकाव के बारे में कुछ बताएं।
अध्यात्म के प्रति झुकाव का बहुत बड़ा कारण है मेरे जीवन में मेरे गुरुदेव का आना।
जी
मैं आर्ट ऑफ लिविंग की अनुयायी हूँ और श्री श्री रविशंकर मेरे गुरुदेव है।
जी
और धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों बिल्कुल अलग है। मैं अंधधार्मिक कतई नहीं हूँ, पर हाँ, मैं
जी
आध्यात्मिक जरूर हूँ। और इसीलिए शायद मेरे जीवन में अद्वैतवाद, निराकार, इन सब भावों का प्रवेश हो चुका है। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानती, कान्हा जी मुझे बहुत प्यारे हैं, पर मैं ये नहीं समझती कि परम तत्व को प्राप्त करने के लिए ये कर्मकांड जरूरी है। मेरा मानना ये है कि बस आप आंखें बंद कर लो, दो बूंद गिरेंगे ना तो भगवान को अभिषेक हो गया।
जी
और शायद हम सबकी खोज यही होनी चाहिए। हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम जाने से पहले कुछ साक्षात्कार करके जाए। और अगर हमारी नियत रही तो ये साक्षात्कार हमारे साथ जरूर होता है। और शेखी नहीं कर रही हूं, पर शायद शब्दों के माध्यम से हम सबको पल पल ये साक्षात्कार होता ही है। हम लेखक बहुत ज्यादा खुश नसीब है कि हमें ये लिखने की सौगात मिली है। तो
जी
अध्यात्म और लेखन, ध्यान और लेखन मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। मेरे जीवन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा अध्यात्म और लेखन दोनों एक समान है।
जी तो आपने बहुत सुंदर से वो कविता लिखी है और उसमें आपने आध्यात्म का जिक्र किया है। जिग्ना जी, आपने जैसे अभी बताया भी कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, आप बहुत किताबें पढ़ा करती हैं, तो किस तरह की किताबें पढ़ना आप पसंद करती हैं? अपनी कुछ पसंदीदा किताबों के बारे में हम सबको भी बताएं।
एक बात कहना चाहती हूँ कि पसंद जैसा कुछ है ही नहीं मेरी डिक्शनरी में।
अच्छा
मैं देखती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ, मुझे क्लिक हो जाता है तो फिर मैं छोड़ती नहीं, एक दिन में खत्म कर देती हूँ।
अच्छा
पर हाँ, आप बोल सकते कि कालजयी पसंद, जो शाश्वत पसंद किसी को हम बोल सकते हैं, तो अमृता प्रीतम,
जी
अमृता प्रीतम में मेरी जान बसती है, गुलजार साहब में मेरी जान बसती है, और हमारे गुजराती के बहुत सारे लेखक हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हिंदी में वृंदावन लाल वर्मा भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो बहुत पुराने लेखक है पर मैंने उनको बहुत पढ़ा है।
जी
कन्हैयालाल प्रेमचंद को पढ़ा है, बहुत सारों को पढ़ा है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरी पसंद है। पसंद आप बस अमृता प्रीतम को बोल सकते।
जी तो जैसे अमृता प्रीतम जी के बारे में आपने बताया, उनकी कोई ऐसी कविता जो आपको हमेशा
मैं तुझे
याद
फिर
हो?
मिलूंगी, पता
जी, आप अपनी
नहीं
आवाज में
कि
उसे
ये
हमें सुनाइए
मैं
प्लीज।
तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पे उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूं। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी, पता नहीं कहाँ किस तरह पर तुझे जरूर मिलूंगी, या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदे तेरे बदन पर मिलूंगी, और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी।
बहुत सुंदर कविता है सच में ये अमृता प्रीतम जी की, जिसमें वो कहती है मैं तुम्हें फिर मिलूंगी।
ये
जी
मैं तुझे फिर मिलूंगी, एक लाइन पे मैंने शायद 25 कविताएं लिखी।
जी
ये पहली लाइन यही होती है, मैं तुझे फिर मिलूंगी, फिर पीछे मेरे भाव चले आते, पता नहीं कहाँ से आते।
बहुत सुंदर जिग्ना जी। अमृता जी तो शायद कहते हैं ना, कई लोग उनके साथ अपने आप को, उनके इमेज में अपने आप को देखने लगते हैं। कई बार आपकी कविताओं को पढ़ा है जिसमें आप कहते हैं कि अमृता की तरह ही आप बहुत कुछ सोचती हैं और बहुत कुछ लिखती हैं। जैसे अभी आपने बताया कि मैं तुझे फिर मिलूंगी के ऊपर ही आपने 25 कविताएं लगभग लिख ली हैं।
लिखी है, और अमृता जी के कोट पढ़ा था मैंने,
जी
उन्होंने कहा था कि कहीं भी एक स्वतंत्र रूह को देखो ना, आप किसी में भी बिंदास स्वतंत्र फ्री फ्री सोल को देखो, आप हमेशा समझना मेरी रूह का एक टुकड़ा वहां है।
जी
और पता नहीं, मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ,
जी
बिंदास हूँ, बड़ बोली बोल सकते हो, वैसी भी हूँ मैं, फेक नहीं रह सकती।
जी जी
शायद कभी कभी लगता है कि रिलेट करते हैं उनसे, और बहुत सारे लोग होंगे शायद आप भी रिलेट करते होंगे।
नहीं, अभी जैसे आपने, मुझे याद है कि रसीदी टिकट पढ़ने के लिए आपने ही कहा था, तो मैंने पहली बार अमृता प्रीतम को उस समय पढ़ा, और सच्ची जब वो पढ़ा और पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि बहुत हद तक हमारी जिंदगी उनसे मिलती जुलती है। तो हम जब पढ़ते हैं और जब किसी लेखक से खुद को रिलेट करने लगे तो उनकी रचनाएं पढ़ने में और ज्यादा आनंद आता है।
बिल्कुल आनंद आता है। एक अमृता प्रीतम और एक सआदत हसन मंटो, ये दो
जी
लेखक ऐसे हैं कि हम सब भी ये सोचते हैं, पर हम में वो हिम्मत नहीं है बोलने की, और
जी
शायद हमारे पास वो टैलेंट भी नहीं है कि वो जैसे बयां करते हम कर सकते, और इसीलिए वो लोग लेजेंड कहलाते।
जी, मंतो जी के ऊपर तो एक अभी सिनेमा बनी थी, वो भी देखी थी मैंने।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के ऊपर।
जी
जी, मंटो को भी बहुत पढ़ा है, टोबा टेक्सी, ठंडा गोश्त, अरे बाप रे, याद
जी
पता है
जी
तो गूज
ठंडा
बम्प
गोश्त तो
आता।
सही में वो एक बार देखने के बाद, और उसके बाद मैंने पढ़ा भी उसको, पढ़ना लिख और जो मूवी बनी है दोनों ही
दोनों ही,
दिल दहला देने वाली है,
हाँ,
वो
गूज
जो
बम्प,
पाकिस्तान और भारत के उस
हाँ
दौरान जो जो हुआ था।
हाँ टोबा टेक्सी भी बहुत अच्छी है, आप जरूर पढ़िएगा।
जी, जिगना जी आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार टूटी भी हैं, इन नाजुक लम्हों में आप अपने आप को कैसे संभालती हैं?
आर्ट ऑफ लिविंग, साधना, सुदर्शन क्रिया और सत्संग। हमारे गुरुदेव कहते हैं 3 S जिंदगी में होने चाहिए, सेवा, साधना, सत्संग।
जी
और गुरुदेव ये भी कहते हैं कि मैं तुझे गिरने का एहसास कराऊंगा पर गिरने नहीं दूंगा, तो एक ट्रस्ट। बस ये 4 चीजें है ना, मुझे आज तक मेरी जिंदगी चला रही है और मैं भी चल रही हूँ, और कभी निराश नहीं किया है इन 4 चीजों ने मुझे। हाँ, दुख आते हैं, निराश होते हैं, गिरते हैं और फिर संभल भी जाते।
जी जिगना जी, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं हमारे जिंदगी में, जैसे आपने बताया कि आपको एकदम सत्य के ऊपर या अपने आप को जैसे हैं वैसे ही दिखाती हैं, आपको फेक बनना नहीं आता, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किस तरह के लोगों से सबसे अधिक आपत्ति है तो आप क्या कहेंगी?
जजमेंटल,
जजमेंटल।
जो सारा दिन चश्मा लगा के बैठते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बैठते हैं, जो सारा दिन वो अनाज में से कंकड़ ढूंढते रहते हैं ना, ऐसे लोग जो होते हैं ना,
जी
मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ होती है।
जी
और पहले तो मैं रिएक्ट भी कर देती थी, अब मैं लंबी लंबी सांसें भर के मूव ऑन कर देती हूँ। और मुझे बॉडी शेमिंग करने वाले लोगों से सख्त नफरत है,
अच्छा।
रेसिज्म, रेसिस्ट लोग, फिर किसी के कलर पे, किसी
जी
के टाइप पे सारा दिन टिप्पणी करते रहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते, ऐसे लोगों से मुझे चिढ़ है।
जी
मैं आध्यात्मिक हूँ, इसका मतलब अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंची कि मैं सबका स्वीकार कर लूँ। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत चिढ़ देती है, और शायद लेखकों को चिढ़ होना जरूरी भी है, तो ही वो समाज को आईना दिखा सकते हैं। तो बस ऐसे लोगों से मुझे चिढ़ है, मुझे जजमेंटल लोग जरूर बिल्कुल नहीं पसंद।
जीना जी, आपको अपनी अंदर ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है?
मैं हार नहीं मानती, रो लेती हूँ, रिएक्ट कर लेती हूँ, दुखी हो लेती हूँ, थोड़े टाइम के बाद फिर अपने आप तैयार हो जाती हूँ कि मुझे हार नहीं मानना है, मुझे फिर से आगे बढ़ना है,
जी
और अपने आप ही ये नेचुरल प्रोसेस मेरे अंदर हो जाता है और मैं फिर से खड़ी होकर फिर से चलने लगती हूँ। मैं हार
जी
नहीं मानती, चल।
जी तो ये तो आपके अंदर का हौसला है जो आप शायद जिस भी परिस्थिति में रही और आगे बढ़ती रही और आज इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखकर सबके सामने पेश करती हैं, लोगों को उत्साहित करती हैं अपनी कुछ हौसले से भरी हुई कविताओं से। जिगना जी, कई बार ऐसा हुआ होगा भूतकाल में जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए या इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ होगा जिस पल को आप फिर से जीना चाहेंगी, तो अगर ऐसा हो कि आपको दोबारा अपने पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप किस पल को फिर से जीना पसंद करेंगी?
मैं अपने बच्चों के बर्थ टाइम में वापस जाना चाहती हूँ। उस टाइम माइंडसेट कुछ अलग था, उम्र भी कम होती है और इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो मुझे अब करनी है वो छोटे थे और मैं नहीं कर पाई, तो मुझे वापस उन पलों को जीना है। तो मेरे बच्चों का जन्म हुआ तब से अब तक वो जो टाइम पीरियड है ना, मुझे फिर से चाहिए, वो मुझे फिर से जीना है।
ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको सबसे अधिक डर लगता है?
डर, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, इस बात से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि
डरना
कभी कभी डरना भी जरूरी है।
जरूरी है जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए जो हमने सोचा हो, कई बार हम सोचते हैं कि जो बीता जो बहुत खराब सी घड़ी थी वो दोबारा ना रिपीट हो जाए, दोबारा कुछ वैसा ना हो जाए, तो कई तरह का डर होता है, पर आपने बहुत अच्छी बात कही, हो सकता है आपके साधना का परिणाम है कि आप किसी बात से डरती नहीं है।
मैंने बहुत झेला भी है, हेल्थ
जी
वाइज पार्टिकुलरली
जी
बोल सकते, मेरी हेल्थ, मेरी बेटी की हेल्थ भी, ये इश्यूज। और जब अपना बच्चा सफर करता है ना,
जी जी
उससे आप बाहर निकलते हो ना, फिर आप कुछ अलग बन के बाहर निकलते हो।
जी जी
तो लड़ाइयाँ, ये संघर्ष जीवन में आते गए और लड़ते गए और स्ट्रांग बनते गए, ऐसा ही आप बोल सकते। तो अब डर का प्रमाण कम हो गया।
आपको बचपन में कौन सा खेल खेलना सबसे अधिक पसंद था?
मैं बचपन से ही टॉम बॉय जैसी रही हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना सबसे ज्यादा पसंद था। स्टेट लेवल तक खेल भी चुकी हूँ क्रिकेट।
ओके, वाह। तो
हाँ, तो क्रिकेट है।
जब आप जीतती थी तो आप उसको कैसे जाहिर करती थी अपनी खुशी को?
उस टाइम तो छोटे थे तो बिल्कुल पागलपंती करते थे, जीतते थे तो बस नाचना कूदना। और स्टेट लेवल में जब सिलेक्ट हुई थी तब तो दादा दादी सबको खड़ा करके डांस किया
अच्छा,
था। फिर उसके बाद मेरा 10th स्टैंडर्ड बोर्ड आ गए तो फिर पापा ने बोल दिया कि अब नहीं, अब ये खेल कूद बंद करो, पढ़ाई में ध्यान दो। तो फिर सब कुछ छूट गया।
जिग्ना जी,
अगर
ऐसा कौन सा सवाल है जो आप अपने आप से अक्सर पूछा करती हैं, जिसका हर बार आपको अलग जवाब मिलता है?
मैं क्यों हूं यहाँ,
हर
मैं इस दुनिया
बार
में क्यों आई हूँ,
जी
तो जब सब कुछ सही चल रहा होता है ना लाइफ में, सब कुछ सेट हो कि सबकी हेल्थ सही चल रही है, कोई इश्यू नहीं है, तो बहुत ऐसे जवाब मिलते कि यार लोगों की सेवा करो, कितने लोगों को तुम्हारी जरूरत है उनको अपलिफ्ट करो, ऐसे ख्याल आते हैं।
जी
और टाइम बीइंग होता है, टाइम ऐसा होता है कि अपनी लाइफ में इश्यूज होते हैं तो ये सारे ख्याल रखो चक्कर हो जाते हैं।
जी
और बस यही कि जो बीमार है उसको ठीक करो, माँ का रोल निभाओ, वाइफ का रोल निभाओ, बेटी का, बहू का, और औरत के तो कितने सारे रोल होते हैं ना,
जी जी
कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई रोल निभाने की घड़ी तो होती है। पर हाँ, इसके साथ साथ हमारे गुरुदेव ये कहता है कि किसी को आप अगर मेंटली अपलिफ्ट करते हो ना तो ये भी एक टाइप की सेवा ही है। तो मिराकी पे जो मैं लिखती हूँ ना, वहाँ बहुत सारे टीनेज बच्चे हैं
जी
और उनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उनके साथ आप ब्लंट होके या एरोगेंस से तो वो ऐसे बात नहीं कर सकते, तो बच्चे बहुत जल्दी डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं।
जी जी
तो ये गॉड गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मैं बच्चों के साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हूँ, टीनेज बच्चों के साथ पर्टिकुलर, और वो अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं और ज्यादातर सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं।
जी
ये बातें बहुत छोटी छोटी है पर बच्चों का प्यार बहुत मिलता है।
जी
और मुझे किसी भी इनाम या सर्टिफिकेट या मेडल से ज्यादा ये जो माँ दीदी सुनने
जी
को मिलता है ना प्यार से, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे
मुझे याद
सवालों
है,
में, हाँ
ज्यादातर लोग आपको जिग्ना माँ के नाम से ही जानते हैं, कुछ लोग जिग्ना दीदी बुलाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को, जो इनको मैं जानती हूँ पर्सनली, वो सब जिग्ना माँ ही बुलाते हैं।
जी, माँ तो पता नहीं कितने बच्चों की माँ हूँ, पर ये जो मिलता है ना उसमें इस सवाल का जवाब भी छिपा होता है कि मुझे शायद ये करना है,
जी
मुझे इन लोगों की मदद करनी है जितनी हो सके मुझसे उतनी, मेंटली अपलिफ्ट करना है इन।
जी आपको यदि मौका मिलता है कि किसी सेलिब्रिटी से आप मिल सकते हो, तो आप कौन सी सेलिब्रिटी से मिलना पसंद करेंगी?
अगर एक तो मुझे अमृता प्रीतम से तो जरूर 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 मिलना
जी
है। और मेरे लिए और सेलिब्रिटी मेरे गुरुदेव ही है, मैं और किसी
जी
को ज्यादा सेलिब्रिटी मान नहीं सकती।
रविशंकर जी, उनके बारे में कुछ दो शब्द बताएंगे आप?
गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, बेंगलोर में उनका आश्रम है, इंटरनेशनल आश्रम, और 153 कंट्रीज में इनके आश्रम है और इनके डिवोटीज है, फॉलोअर्स है। ये सब तो मटेरियलिस्टिक बातें हुई, पर मैं भी ज्यादा गुरु या व्यक्ति की बातों को इतना मानना, इसमें मैं बिलीव नहीं करती थी। हमारे घर में ही पूरा माहौल था आर्ट ऑफ लिविंग का, पर मैं हंसी उड़ाती थी, मैं सच बोलती, मैं हंसी उड़ाती थी कि ये सब ये क्या पागल हो रहे। और फिर पता नहीं मेरा टाइम आया, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स किया, बेसिक कोर्स से मुझे ऐसी अनुभूति होने लगी कि गुरुदेव कहीं मेरे आसपास,
जी
ये आप फील कर सकते हो, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा एक्सपांड हो चुकी है कि यू कैन फील हिज प्रेजेंस। कभी कभी आप उनकी प्रेजेंस फील करते हो, आपकी तकलीफ जैसे उन्हें पता है।
जी
और ये भी नहीं है कि वो ऐसे ही चमत्कार होकस पोकस, वो खुद फिजिक्स में बीएससी ग्रेजुएट है, साइंस ग्रेजुएट है, और साइंस का बेस लेकर ही उन्होंने अपनी सुदर्शन क्रिया का आविष्कार भी किया है। और सुदर्शन क्रिया करने के बाद ये जिग्ना का नया जन्म है। मैं बस एक वाक्य में सबको कह सब कुछ कह सकती हूँ कि ये मेरा नया जन्म है मेरे गुरुदेव के आने के बाद।
क्या बात है। तो आपने कब से करना शुरू किया था ये जो
ये
क्रिया है
मैंने
उसके
2011
बाद?
उसके बाद मैंने जो भी विश किए, मतलब मेरे लिए नहीं, गुरुदेव पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद मैंने सोचा गुरुदेव मुझे आपसे मिलना है, मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं, मैं उसी से आ रही हूँ। ये मन ही मन गुरुदेव के साथ बातें होती है। मैं बोल रही थी मेरे पास बहुत लिमिटेड पैसे हैं, मैं एक बार आ सकती हूँ, मैं बार बार आपके पास आश्रम नहीं आ पाऊंगी। बस ये संकल्प करके मैं आश्रम पहुंची, मेरा बर्थडे था। गुरुदेव इतने बिजी रहते हैं, उनके पास इतने देश विदेश के नेता ये वो सब उनको मिलने आते हैं। मैंने बस आश्रम में प्रे किया था कि गुरुदेव मुझे आपसे पर्सनली मिलना है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। पता नहीं उस दिन सामने से कॉल आता है कि गुरुदेव आपको कुटीर में मिलने के लिए बुला रहे। मैं कोई नहीं कुछ नहीं, और उन्होंने मुझे सामने से कुटीर में मिलने को बुलाया। बड़े प्यार से मुझसे मिले, मुझे ब्लेसिंग्स दिए, मुझे गिफ्ट दिया, स्प्रे की बॉटल दी उन्होंने। और वो जो कंटेंटमेंट है ना, वो जो संतोष का भाव है ना, वो आज तक मेरी जिंदगी में है, उसके बाद कभी गया ही।
तो ये आप जो गई थी आर्ट ऑफ लिविंग के लिए, अपने हेल्थ के खराब होने के बाद गई थी या ठीक होने के बाद गई थी?
मेरी हेल्थ, मुझे अस्थमा का सीवियर प्रॉब्लम था तो, और हमारे घर में बहुत सारे लोग आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं, इनलॉज मेरे साथ,
जी
और तो कुछ तो टीचर भी है आर्ट ऑफ लिविंग के, तो सब मुझे बोलते रहते थे तू कोर्स कर, तुझे अस्थमा में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इससे। पर जैसे मैं बोला ना कि मैं ही मजाक बनाती थी इन चीजों का,
जी
मैं गई नहीं। फिर शादी के 11 साल बाद मेरे कर्म शायद हुए कि अब मुझे करना है, और मैंने किया। जैसे ही किया, मेरे अस्थमा तो अब समझो गायब ही है ही नहीं मेरे
जी
साथ, और मुझे और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, उसमें भी मैं अब मुझ में लड़ने की हिम्मत आ गई आर्ट ऑफ लिविंग करने के बाद।
जी 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 ये जो आपने बताया आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में, बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े होते हैं, और कई लोगों का मानना होता है कि जब वो इससे जुड़ते हैं तो उनकी कई सारी बीमारियां या किसी मानसिक तरह की जो बीमारी होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो आपने एक कहते हैं ना, एक सजीव उदाहरण है जो बता रही है कि आपका कितना अच्छा हुआ और आप अपना नया जन्म बताती हैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ।
जी बिल्कुल, गुरुदेव के साथ।
हमारा समापन के पहले आपसे गुजारिश करूंगी कि एक और कविता आप हम सबको सुना दें।
अच्छा, कविता के बारे में ही कविता सुना दूं कि
जी।
मैं जो लिखती हूँ मेरी कविता कैसी है? वो कोई श्रृंगार कर बंठन नहीं मचलती है, मेरी कविता श्रृंगार कर बंठन नहीं मचलती है, वो गुलैंची के कर्ण फूल, गुलैंची मतलब चंपा के जंगली फूल,
जी
वो गुलैंची के कर्ण फूल और हार पहन बेफिक्री से थिरकती, ना गुलाब का शबाब ना अमलतास का रुआब, आंखें कज्जल भरी अपने ही वर्ण और स्वयं नियोजित स्वर, बस नाचती रहती है बेफिक्री से थिरकती, कोई चाहे तो निर्लिप, कोई हंसी उड़ाता तो निर्मोही, कोई निर्लज भी कहे उसे क्या पता वो कहाँ है सुनती, वो भील कन्यासी शिव को मुंह लगाने नाचती पार्वती जी से, मेरे आत्म के शिव हो या आपके मन के महादेव, जंगली तापसी सी मेरी कविता, जंगली तापसी सी मेरी कविता। धन्यवाद।
बहुत सुंदर, आपने बड़े सरल शब्दों में बता दिया कि आपकी कविता कैसी होती है, बिना श्रृंगार की हुई भी लेकिन वो जंगली अमलतास के फूलों की तरह। बहुत सुंदर।
थैंक यू। पहले मैं ऐसे ही सोचती थी, मेरे पास भाव बहुत ज्यादा थे।
जी।
फिर पहले मैं ऐसा मानती थी कि जो भाव आते हैं ना वो लिख दो, सरलता होनी चाहिए, ये सब भी सही है क्योंकि भाव
जी।
मेन है कविता में। पर उसके बाद इतने सारे दोस्त जुड़े और सबने समझाया कि नहीं, नई नई विधाएं भी सीखनी जरूरी है,
जी
जितना
जी
शब्दों को बांधोगी ना उतने तुम्हारे इमोशंस बंधेंगे।
जी
ये बात मुझे मरहूम नौशाद जी ने कही थी जो
जी
अभी गुजर गए। उन्होंने
जी
कहा था आप गजल सीखो, आपके पास कमाल भाव है, जितना आप शब्दों को बांधेंगी ना उतना आप अपने इमोशंस को बांध पाएगी।
जी
और उन्होंने मुझे 1-1.5 महीने तक सिखाया और मैं गजल सीख भी गई। मैं नहीं लिख पाती थी गजल बिल्कुल भी, उन्होंने 1 महीना मुझे सिखाया और मैं सीख गई, और अब पता नहीं कोई ब्लेसिंग देकर गए कि अब कोई बाधा नहीं है
जी
गजल लिखने।
जी वो उनका जाना सही में एक बहुत बड़ा हादसा था
बहुत
शायद
बड़ा
हम सब
लॉस है
के
हम सबके
जी
लिए, बहुत बड़ा
जी
लॉस
क्योंकि वो मैं भी उनको नहीं जानती थी, ऐसे ही कभी किसी कविता को लेकर बात हुई थी और ऐसा लगता था जैसे बहुत बहुत समय से जानती थी उनको।
सही है, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे।
जैसे मुझे याद है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ बाद में, पता नहीं वो कैसी फीलिंग है या क्या है, मैंने उनसे पूछा था कि सर आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ, उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, और बस अचानक से मिला तो बस लगता था थोड़ा और पहले पूछ लिया होता, सबसे पहले शायद उनसे ही ले लिया होता तो आज उनकी आवाज मेरे पास होती।
बस यही होता है कि जीवन की संध्या जब आती है ना हमारी, ये थोड़ा और बहुत परेशान करता है।
जिग्ना जी अभी अंत में आपसे आग्रह करूंगी कि सभी श्रोताओं के लिए कोई 3 ऐसी बात बताएं जो उन्हें जीवन में हमेशा याद रखनी चाहिए।
जी बिल्कुल, पहली बात किसी को जज नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं।
जी
दूसरी बात, समय अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, बुरे समय में धैर्य कभी नहीं गंवाना। ईश्वर आपकी सहनशीलता से अधिक दुख आपको कभी देगा ही नहीं।
जी
और तीसरा, बस यार खुश रहो, खुशियां बांटो, प्यार बांटो, जितना हो सके दो, जितना
जी
हो सके दो, क्योंकि पता नहीं अपना बुलबुला कब खुश हो जाने वाला है।
बहुत सही, तो हर एक मोमेंट को एंजॉय करो क्योंकि तुम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है और कब होने वाला है।
जी बिल्कुल, और सबके लिए 2 लाइन भी कहना चाहूंगी।
जी जी जरूर
कभी मेरी कलम, मेरी स्याही और मेरा दिल लेकर लिखना। कभी मेरी कलम, मेरी स्याही, मेरा दिल लेकर लिखना, आपको पता चलेगा आप सब कितने प्यारे हो।
बहुत सुंदर जिग्ना जी।
और मुझे इतनी खुशी हो रही है, कुछ गड़बड़ की होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शाय हूं, मैं लिख के डाल देती हूँ, पर जब बोलने की बारी आती है या लाइव करने की बारी आती है तो मैं थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, गड़बड़ाती भी हूँ, क्योंकि इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर
नहीं
आपने
जिग्ना
मुझे
जी
बहुत
आपका
सहज रखा।
बहुत 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 धन्यवाद जिग्ना जी कि आपने सबसे पहले तो स्वीकार किया और यहाँ आकर हमारे साथ इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की और अपने जो कहते हैं ना नए जन्म के बारे में भी उस रहस्य को हम सबों को बताया जो शायद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और वो भी समझ पाए कि जो
जी
आर्ट ऑफ
मैं इतना
लिविंग
ही,
या आर्ट ऑफ
हाँ,
लाइफ है।
आर्ट ऑफ लिविंग भी नहीं कह रही मैं इतना कहती हूँ, अध्यात्म ध्यान को अपने जीवन
जी
में स्थान जरूर दे,
जी जी
जरूर
मैं भी उस एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ आर्ट ऑफ लिविंग, जो रियल आर्ट है लिविंग का, दैट्स
जी
जस्ट अबाउट लिविंग इन योरसेल्फ। जो आपने लास्ट में 3 बातें कही कि ईश्वर कभी हमें हमारी सहनशीलता से ज्यादा नहीं देता है और
जी
अगर
जी
हम अपने हर एक मोमेंट को एंजॉय करें यानी कि जो भी मिल रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा चीज जो आपको मिल रहा है वो किस रूप में मिल रहा है और वो आपको कब क्या दे जाएगा, तो इसमें मैं स्टीव जॉब्स की बात, वो है ना कनेक्टिंग दी डॉट्स, तो हर
यस,
डॉट रियली अपने आप में कनेक्टेड है।
आप आपको
जी
पता है ना, स्टीव जॉब इंडिया आके फिर खड़े हुए थे, वो हार चुके थे, वो
जी
इंडिया आके अध्यात्म अपना के उन्होंने एप्पल का क्रिएशन किया था, बस इतने में ही समझना है सब कुछ।
जी 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 जी
जी
बहुत बहुत शुक्रिया जिग्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा फील करवाने के लिए। थैंक यू।